नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों को सशक्त बनाया है।
पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
श्री मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को मजबूत करने को कहा।
2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है, और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज चौथे दिन भी बिहार में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच लोकसभा ने आज मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण लाया गया था। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारित नहीं होता है तो राज्य को जीएसटी परिषद द्वारा लंबे समय से अनुमोदित जीएसटी संशोधन को लागू करने में कठिनाई होगी। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी। नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों वाले उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह दिन भारत की समृद्ध बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाने का है जो नागरिकों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री ने भारत की हथकरघा विविधता और आजीविका एवं समृद्धि को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर गर्व व्यक्त किया। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी है। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नागरिक प्रशासन के कुल 518 कर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 12 अगस्त तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लेह लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 3,000 हस्तनिर्मित राखियां भेजी हैं। यह एकता और राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना को दर्शाता है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।